बिस्मिल्लाह करें।
जी सर, मेरा सवाल है सर, कुरान पाक को वही की तर्जों में समझना चाहिए। सर ये प्लीज समझा दे कि वही की तर्जें क्या है।
देखिए, हम जिस शऊर में रह रहे हैं, ये हमारा शऊरी निजाम है। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, ये सब हमारा शऊरी निजाम है। ये बात वाज़े हो गई। अब एक बात यह है कि शऊरी निजाम में आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमारी छठी हिस काम करती है, हमें कोई इत्तला मिलती है और हम कहते हैं शऊरी तौर पे तो ये इत्तला नहीं मिल सकती थी हमें, यानी बज़ाहिर कोई करीना नहीं होता उसका, लेकिन वो इत्तला जो है वो हमारे लिए कुछ अचंभे का बायस होती है, शऊर के लिए अचंभे का बायस होती है, लेकिन इत्तला तो इत्तला होती है। अब उस इत्तला का टेक्निकल नाम कुरान ने इल्हाम बताया है। अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, फलहामहा फजूरहा व तक्वाहा। अब इस आयत में क्या मतलब है कि अल्लाह रब्बे करीम फरमा रहे हैं कि इल्हाम करता हूं फजूर भी और तक्वा भी। फजूर क्या चीज है? यानी जो सिस्टम को तोड़ने वाली बात है उसे फजूर कहते हैं, इसी से लफ फजर है। फस को फजूर यानी के बुराई, हमारे यहां इसका तर्जमा फस को फजूर ये किया जाता है। अब तकवे का मतलब क्या है? एहतियात करना। यानी अल्लाह रब्बे करीम हर बंदे को इल्हाम करता है, यानी उसके अंदर एक चीज एजेंसी है जिसको जमीर कहते हैं। जमीर एक चीज को इत्तला को वसूल करता है और आपको आगाह करता है कि ये बात दुरुस्त है, अच्छी है, बुरी है, आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से जो इत्तला दी जाती है उसको अल्लाह के निजाम से जो इत्तलात आपके अंदर से फीड होती हैं जिसको जमीर कहते हैं, यानी नूरे बातिन का इसको हजरत कलंदर बाबा ने। तो ये जो अंदरूनी इत्तलात हैं इनको इल्हाम कहते हैं। अब वही क्या है? वही अल्लाह की तरफ से बराह रास्त आने वाली इत्तला है। अब अल्लाह की बात को समझने के लिए आपका ये शऊरी निजाम बिल्कुल नाकाफी है। इसके लिए आपको इल्हामी सिस्टम को समझना है और इल्हाम की तर्जों से ऊपर उठेंगे। जब आप इल्हाम की तर्जों में चलेंगे कदम ब कदम तो आप वही की तर्जों को समझने के अहल हो जाएंगे। वही वो डायरेक्ट मैसेज है जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह शहद की मक्खी को भी वही करता है, अल्लाह जमीन को वही करेगा। मा ओ हा, मैंने तो वो किया जो मुझे वही किया गया, ये जमीन कहेगी एक तीसवें पारे में ये मा ओ हा। अब हमने चूंकि हमारा शऊर इस काबिल नहीं है कि अल्लाह की बात को बराह रास्त पिक कर सके, इसलिए अंबिया कराम जितने मतलब अंबिया अलैहिस्सलाम आए उनको अल्लाह रब्बे करीम कि ये बात पिक करना आती थी, बात को वो समझ सकते थे, अल्लाह की तरफ से आने वाले इस पैगाम को उसी तरह समझते थे जिस तरह अल्लाह समझाता है, समझाना चाहता है या समझाना चाहता था। हजूर अलैहिस्सलाम ने ये किया कि वो सारा पैगाम जो अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से उनको दिया गया उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो अब हम कुरान को क्या कहेंगे? कुरान क्या है? कुरान हजूर अलैहिस्सलाम की बात तो नहीं है, वो तो अल्लाह की बात है। जब अल्लाह की बात होगी तो उसको वही के अलावा कोई नाम नहीं दिया जा सकता। तो قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے شعوری طرزوں سے اوپر اٹھ کر پہلے تو الہام کو سمجھنا ہے. الہامی جو الہام ہوتے ہیں انسان کو جو انسپائریشنز آ رہی ہوتی ہیں اس کو ریڈ کرنے کے قابل ہونا ہے. تب جا کے آپ جب سر دکھائیں گے قرآن میں سر دے کے غور کریں گے فکر کریں گے تفکر کریں گے تو رفتہ رفتہ آپ کو اللہ کی بات اس طرح سمجھ آئے گی جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے. اب یہ جو کتاب ہے ہمارے سلسلے کی لوح قلم اس کے شروع میں حضور مرشد کریم نے لکھا ہے کہ یہ الہامی تحریر ہے, یعنی یہ وہ برج ہے جو شعور کو وحی سے جوڑ رہا ہے. اگر ہم لوح قلم سمجھ لیں گے کیا ہوگا, ہمارا ذہن الہام سے متعارف ہوگا. جب ہم الہامی تحریر کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے, دیکھیں نا اس کتاب کا آخری جملہ کیا ہے, لوح قلم کا آخری جملہ ہے, اگر ہم وسیع تر اطلاعات حاصل کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ بجز روحانی علوم کچھ نہیں ہے, اور روحانی علوم کے لیے ہمیں قرآن سے رجوع کرنا ہوگا. یہاں پہ آ کے کتاب ختم ہو جاتی. کیا مطلب ہوا, حضور قلندر باب اولیاء نے الہامی طرزوں میں ہمیں طریقہ بتایا کہ قرآن کو کیسے ڈی سائفر کرنا ہے, اس کے اصل مطلب تک کیسے پہنچنا ہے, کیا طرز فکر تھی انبیاء کرام کی, وہ طرز فکر ہم حاصل کر کے کس طرح وحی کو سمجھ سکتے ہیں. اب وحی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ میاں آپ پہ علیحدہ سے یا مجھ پہ کوئی وحی نازل کرے گا, بلکہ اللہ رب کریم نے جو بات کہنی تھی وہ اپنے محبوب بندے کو بتا دی, اس کو وحی کر دیا. اب ہم نے اس وحی کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھا. دیکھیں یہ چیزیں آپ پوچھیں گے, کوئی بتائے گا, پھر آپ اس پہ خود تفکر کریں گے, خود غور کریں گے, تب جا کے آپ کے ذہن میں یہ باتیں واضح ہوں گی. اگر آپ
جب ہم جیسے آپ عام بندے جب غور و فکر کرتے ہیں لغت کو لے کے کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی, تو ہمیں جو خیالات انسپائر ہوتے ہیں کیا وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں؟
یہ ایک اور سوال آ گیا, میں اس کا ذرا وضاحت سے جواب دینے کی اجازت چاہوں گا. دیکھیں خیال کی چار قسمیں ہیں. کیا یہ جو ہمارے ذہن میں سوچیں آتی ہیں نا, ان کی چار اقسام ہیں جن کا کسی نے تذکرہ ہی نہیں کیا کبھی. پہلا خیال وہ ہے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اور وہ مقصد حیات سے جڑا ہوتا ہے. کس سے؟ اگر خیال کو دیکھیں کس سے جڑا ہوا ہے, وہ مقصد سے ریلیٹڈ ہے, وہ تقاضوں سے ریلیٹڈ ہے, خواہشات سے ریلیٹڈ ہے, یا شیطنت سے ریلیٹڈ ہے. یہ چار کیٹیگریز ہیں. آپ کے ذہن میں آنے والا جو بھی خیال ہوگا یا وہ ان چار میں سے کسی ایک قسم کا ہوگا. اب جو خیال آپ تولیں گے نا کہ بھئی قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے مطابق ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے, آپ کے مقصد حیات کی سے ریلیٹڈ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا, آپ کو کوئی آپ کے مقصد کی طرف کون متوجہ کرے گا؟ وہ ہستی جس نے آپ کو تخلیق کیا اور آپ کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا نا, یا ویسے ہی بس اپنے کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں, دیر از اے پرپز. وہ خیال جو کسی پرپز کے ساتھ مطلب ہے ریلیٹ کرتا ہے, کسی پرپز نہیں, وہ پرپز جو اللہ کا اپوائنٹڈ پرپز ہے, اس کی طرف متوجہ کرنے والے خیالات اللہ کی طرف سے. مثلا آپ کو خیال آیا کہ جی ہم قرآن پڑھیں, ख्याल आया हमें कुरान को समझना चाहिए। मैं मतलब भाई कहते हैं ना बिला, वो क्या कहते हैं, बिला खतरे तरदीद, कि मुझे ये खतरा नहीं है कि मुझे तरदीद करनी पड़ेगी अपनी बात की। बिला खौफ तरदीद, हाँ बिला खौफ तरदीद, ये ज़हन इधर चला गया, माफी चाहता हूं, कि जो बात आपको नजर आए कि ये बात अल्लाह की तरफ से, आइडेंटिफाई करना सीखें ख्याल को, हर ख्याल को अल्लाह पे नहीं चिपकाएं। अब दूसरा किस्म है जो हमारे नफ्स की तरफ से आती है, वो हमारे तकाजों से रिलेटेड होती है। मसलन अब आपको ख्याल, भूख प्यास लगी, भूख लगी, तो आपको ख्याल आया मुझे खाना खाना चाहिए, ये क्या है, ये वो नफ्स की तरफ से इत्तला है। इसी तरह इंसान के जिस्मानी तकाजे हैं, ज़हनी तकाजे हैं, रूहानी तकाजे हैं। अब वो ख्याल आपके किस दर्जे के तकाजे से रिलेट करता है, इतनी फहम, इतनी विजडम, इतनी फिरासत आप में होनी चाहिए। जब आप में इतनी फहम और फिरासत हो कि आप आने वाले ख्याल को तोल तो सकें कि ये मकसद से रिलेटेड है, किसी तकाजे से है, तो नफ्स की तरफ से आने वाली ख्यालात जो हैं वो होते हैं तकाजों से रिलेटेड। फिर आगे तकाजों की किस्में बता दी मैंने। अब तीसरी किस्म के ख्यालात हैं वो माहौल से इत्तलात आती हैं। माहौल से आने वाली सारी इत्तलात जो हैं ये हमारे ख्वाहिशात पे मबनी होती हैं। मसलन आप कमरे में दाखिल हुए, आपने देखा कमरे में पर्दे लगे हुए नहीं हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर्दा हो, खिड़कियों पर्दे लगे हुए हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर्दे हों। अब ये ख्याल क्या है, आप कहें जी अल्लाह की तरफ से आए, नहीं ये आपकी ख्वाहिश है, ये माहौल से आ रही है इत्तला, आइडेंटिफाई करना सीखें। जब तक हम इस तरह की कुमन केरियों में, उलझनों में, उलझाओं में पड़े रहेंगे कि जी हर ख्याल अल्लाह की तरफ से आ रहा है मैं क्या करूं, नहीं भाई तुम्हें अल्लाह ने एक पूरा निज़ाम काम कर रहा है, उस निज़ाम के तहत तुम्हें बाशऊर बनाया है, तुम्हें इदराक और फहम की सलाहियतें अता की हैं। जब आपको इदराक और फहम का इस्तेमाल नहीं आता तो कसूर किसका हुआ, अल्लाह का कि आपका। जब हम किसी बात को प्रॉपरली स्कैन ना करें, स्केल ना करें, और हम अल्लाह पे थोप दें, तो जाहिर है फिर ये खिलवाड़ मचता है कि आज मुसलमानों का जो हशर है वो हशर हो रहा है हमारा। क्या नहीं किया हमने, जहन से काम नहीं लिया, गौर नहीं किया, फिक्र नहीं की, तफक्कुर नहीं किया, तदब्बर नहीं है, ताक्कुल नहीं है। अब चौथी किस्म के ख्यालात के हैं, वो हजरत शैतान की तरफ से होते हैं, हमारे नेगेटिव साइड से होते हैं, हमारी अंदर जो नेगेटिव इंसान है। देखे ना हर इंसान के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दो रुख हैं, उसका पॉजिटिव रुख रहमानियत है और उसका नेगेटिव रुख शैतनत है। वो क्या करता है, वो इन तीनों किस्म के ख्यालात को, अल्लाह की तरफ से आने वाले ख्याल को, आपके नफ्स की तरफ से आने वाले ख्याल को, और माहौल से आने वाली इत्तलात को क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता रहता है, बिगाड़ता रहता है, उसको नेगेटिव शक्लें देता है। मिसाल अब एक साहब महफिल में बैठे दांत निकाल रहे हैं, हंस रहे हैं, अब आप अपनी जगह सहम रहे हैं कि ये जी मेरी किसी कमजोरी पे हंस रहा है, ये मेरी किसी खामी पे मुस्कुरा रहा है। अब ये उसकी खुशी को बुरा किसने दिखाया, अल्लाह ने, भाई वो बंदा अपनी जगह खुश हो रहा है, हम माहौल का असर ले रहे हैं, अल्लाह ने मना किया, ला हौला वला कुव्वता, हम ये आयत पढ़ते हैं और शैतान को इस भगाने के लिए इसको दुर्रे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब पता नहीं है हमें। ला हौल, हौल कहते हैं इर्द गिर्द को, मा हॉल, माँ जो कुछ, हॉल इर्द गिर्द जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है वो सब क्या है? माहौल। हम माहौल के चक्कर में पड़े हैं, अल्लाह कह रहा है लाहौल, कोई कुछ नहीं है इर्द गिर्द, मत तवज्जो दो इसको। तो सेरून अल हयात दुनिया, तुमने तो दुनिया की जिंदगी का असर लिया हुआ है। ये वही कह रही है क्या कि दुनिया की जिंदगी का असर नहीं लेना, दुनिया को इस्तेमाल करें, दुनिया को बरतें अपने भले के लिए, दूसरों के भले के लिए। हम क्या कर रहे हैं? हम याद सिर्फ अपना भला चाहते हैं, दूसरों का नुकसान चाहते हैं। ये तखरीब आ गई, ये शैतनत आ गई। तो ये बात वाज़े हो गई कि जी अल्लाह अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह जो चाहता है वो ये चाहता है कि आपको जिस मकसद के लिए तख्लीक किया आप वो पूरा करें। अल्लाह चाहता है कि उसकी मखलूक खुश रहे। अल्लाह चाहता है कि बंदा बंदे का पुत्र बन के जिंदगी को एहतियात से बसर करके ये 50 साल 100 साल जो है ये पूरे करे और वापस अपने धंधे से आए, अपनी सीट पे बैठे। कौन सी सीट? वो सीट जिस के बारे में अल्लाह ने कहा इन्नी जायलो फिल अर्द खलीफा, इंसान को अल्लाह ने अपना खलीफा बनाने से पहले डिक्लेयर किया कि मैं क्या बनाने लगा हूं। हां या नहीं? अब जब हमने अल्लाह रब्बे करीम ने हमें अपना खलीफा बनाया, अपनी रूह में से कुछ फूंका, व नफख तो फी है मिनर रूही, उसके बाद कहा कि भाई मेरे कारखाना है कुदरत, पूरी फैक्ट्री का जायजा लो क्योंकि तुमने मुझे असिस्ट करना है, सेकंड इन कमांड बन रहे हो, पहले जाके पूरा कारखाना विजिट करके आओ। इस कारखाने के 9 शोबे थे, ठीक है, हम आखिरी शोबे पे आए हैं। अब यहां से वापसी पे हमने 8 शोबे गुजर के वापस अल्लाह के पास जाना है। तो अल्लाह मियां पूछेंगे हाँ भाई क्या समझे, आ गई समझ के ये सिस्टम कैसे चल रहा है? हम कहेंगे जी हमें आपकी बात ही नहीं समझ आई, सिस्टम माँ का सिर समझ आना था भाई, हमें अल्लाह की बात समझने में कितनी दुश्वारी पैदा हो गई, ये किसने किया? हमारी जहालत ने किया। पहले आप अल्लाह की बात को समझेंगे, फिर अल्लाह की बातों को समझते समझते अल्लाह के निजाम को समझने लगेंगे। जब आप निजाम को समझने का शऊर उजागर कर लेंगे, इसको कहते हैं रूहानियत। और हमारे यहां क्या है, वो जी मेरी रूह आ गई तो फलाने की रूह देख ली, रूहें देख रहे हैं यहां, शोभदाबाजी बनाई हुई है, चूरन बिक रहे हैं हाजमूला लोगों ने रूहानियत का इस्तेमाल पेट दर्द के इलाज के तौर पे रखा हुआ है। लोग जाते हैं अब्बा से पूछते हैं जी मेरे पेट में दर्द है क्या इलाज करूं, और मैं उनके हौसले को सलाम करता हूं, यकीन करें कि वो बहुत ही तहम्मल है उनमें, वो आगे से बाकायदा इलाज बताते हैं कि भाई ये दवाई खा लो, ये दवाई नहीं ये अमल कर लो, ये कर लो, हर अमल हर मसले का हल वो ऐसा बताते हैं कि बंदे का ध्यान अल्लाह की तरफ लग जाए। जब बंदा अल्लाह से वाबस्ता हो जाता है, केयर ऑफ अल्लाह सोचना सीख लेता है, आपको सुन के हैरत होगी, उस बंदे के मसले फिर अल्लाह ही हल करता है, उसको मसले नहीं दरपेश होते। इसलिए कहते हैं अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लो। ये किसने कहा है? ये कुरान में कहा गया, यानी वही किया अल्लाह ने। क्या? अकीमुस सलात वातुज़ ज़कात। अब हम उसका मतलब ही नहीं समझे, हमने ड्रिल तो शुरू कर दी, ड्रिल है ना, एक रिचुअल बना दिया, उसको एक रस्म बना दिया, उसकी स्पिरिट हमने नहीं समझी, उस तरह से अपना ताल्लुक अल्लाह से नहीं बनने दिया। क्या जब हम वजू करके जाय नमाज पे खड़े हो जाएं तो हमें महसूस हो कि हम अल्लाह के सामने हाजिर है। जी तो बात वाजे हो गई, माफी चाहता हूँ थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जा हो गया।
नहीं सर, बहुत अच्छी तरह। सर एक और सवाल था,
इरशाद
आप बता रहे थे ना कि अल्लाह नूर समावाती वलद, यानी अल्लाह के ख्याल में आया, तो ऐसे ही मुझे ये सवाल आ रहा था कि अब्बला खलक मा नूरी, ये सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर।
जी जी,
तो उसके बाद जो है ना कायनात सूरज चांद सारे जो है ना वो तखलीक किए, तो सबसे पहले अल्लाह को हुजूर अलैहिस्सलाम का ख्याल आया, उसके बाद यानी कायनात जो तश्कील हुई उसका जरा बता दें।
इस बात को यूं समझें कि आप एक घर बनाना चाहते हैं, क्या आप एक घर बनाना चाहते हैं और पहले आप ये सोचते हैं कि मैं बनवाऊंगा किससे, सवाल आएगा ना कि इसका ठेकेदार कौन होगा।
जी सर बिल्कुल,
दुनिया के कामों में तो हम बड़े सयाने हैं। यानी कि जब आप घर बनाने का सोचते हैं तो पहले ठेकेदार का फैसला करते हैं कि किससे बनवाऊंगा, हाँ या नहीं। तो खालिके कायनात को आप इतना भी काबिल नहीं समझते कि वो कायनात बनाने से पहले सोचे कि मैं किससे चलवाऊंगा। जाहिर है अल्लाह रब्बे करीम ने पहले ये तय किया। ये बात तय की कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं, और फिर बताया कि भी मैं एक अपना खलीफा बनाऊंगा, ये नहीं कहा कि मैं किसको बनाऊंगा। इन्नी जायलो फिल अर्दे खलीफा, ये भी इसी वही में है ना।
बिल्कुल सर,
अब अल्लाह के जहन में ये बात वाजे थी, क्या अल्लाह के जहन में ये बात तो बिल्कुल वाजे थी कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं, और आगे मैंने उसको किस बंदे को, मतलब अपनी मखलूक में से किसको, इन सलाहियतों से, कौन सी सलाहियतों से आरास्ता करना है, ये अल्लाह ने पहले सोच लिया ना, तय कर लिया। अब जब हजूर अलैहिस्सलाम ने उस मुकाम पे पहुंचने के बाद बताया कि सबसे पहले अल्लाह ने मुझे सोचा था, ठीक है, और हम इस बात को डिबेट बना रहे हैं, इसको लॉजिकली सोच के देख लें, इतनी सी बात है, ठीक हो गया। देखे ना हजूर अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से अल्लाह रब्बे करीम को जाना और समझा, काविश किसने की भाई, अल्लाह ने उनको एक सैंपल, एक नमूना, एक बर्तर मिसाल के तौर पे तख्लीक किया, लेकिन काविश किसने की, गारे हिरा तक जाके वहां बैठ के हफ्तों या दिनों, दो दो तीन तीन दिन वहां पे बैठ के क्या सोचते थे, क्या करते थे, गौर व फिक्र करते थे, उसको इस्तलाहन मुराकबा कहते हैं। गौर व फिक्र करने का नाम है मुराकबा, और हम यहां सिर्फ मुराकबा, किसी को कहो कि मुराकबा करो तो वो ये नहीं मतलब लेता कि ये मुझे गौर व फिक्र कह रहा है, गौर व फिक्र करने का कह रहा है, ये बात नहीं समझ आती। हमें क्या समझ आती कि सीधे होके बस वो जैसे हिंदू बैठते हैं ना, बस सीधे होके बैठ जाओ और आंखें बंद करके एक तस्वीर सजा लो आंखों में और हिलना नहीं, वो जी मेरी टांग सुन्न हो जाती है, वो भाई पहलू बदल लो, सोते में आप पहलू बदलते हो कि नहीं? नींद तो नहीं खराब होती? क्यों? वही बात कि दुनिया के कामों में हम बड़े सियाने हैं। जहां अल्लाह की बात आएगी वहां हमारी अकल की टांगें कप कप आएंगी, फिर टूट जाएंगी। हाँ या नहीं? मुराकबा जो है दरअसल गौरो फिकर करने का नाम है। आप जब तसव्वुर शेख का मुराकबा करते हैं तो असल में क्या करना है? हमने बैठ के ये सोचना है कि अब्बा कैसे हैं, अब्बा कैसे बात करते हैं, अब्बा कैसे बिहेव करते हैं, अब्बा कैसे मसाइल का हल बताते हैं, अब्बा इस बात को वो कैसे हल करते हैं। कभी हमने इस तरह सोचा मुराकबे में? गौरो फिकर का नाम है मुराकबा। मैं माफी चाहता हूं, फिर फिसल गया, बात आ गई कि ये जो बातें हैं ये खुद गौर करने से समझ आएंगी, ये कहना ये चाह रहा था। ठीक हो गया? जी, और कोई?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा ये सवाल था कि कुरान में हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया बयान हुआ है,
जी,
और
जी।
हजरत सुलेमान और हजरत अर्शद बख्शिया का वाकया भी है,
जी जी।
तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो इल्म इन हजरत के पास था वो पैगंबरों के पास नहीं था?
आप खुद बताएं, आपका क्या अंदाज है?
सर इस तरह हो तो नहीं सकता।
क्यों नहीं हो सकता? भाई देखिए, जो इल्म नबी को दिया गया वो अल्टीमेट नॉलेज नहीं है। अल्लाह जो खुद जानता है, देखे ना, फरिश्तों ने एतराज किया कि जी ये फसाद करेगा, खून बहाएगा। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये नहीं कहा कि नहीं करेगा है? अब क्या मतलब हुआ कि फरिश्तों का इल्म? भाई अल्लाह के इल्म के मुकाबले में किसी का इल्म कोई माने नहीं रखता। फिर अल्लाह रब्बे करीम खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि अपनी रहमत से मैंने उस बंदे को खुद इल्म अता किया लुदुन का। इसी से इल्म लुदुन्नी की इस्तलाह वजूद में आई। क्या? कि वो इल्म जो, देखें, इल्म नबुवत और है, और अल्लाह उसके अलावा किसी को कोई इल्म देता है तो अल्लाह का सवाब दीदी इख्तियार है। बंदा ख्वाहिश कर सकता है, बंदा कोशिश कर सकता है, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआ कर सकता है कि बारे ला तो मुझे इल्म लुदुनी से नवाज दे। ठीक है, उसकी शर्तें अल्लाह मियां कहते हैं ठीक है भाई, तुम मेरी निशानियों पे गौर करो। कुरान बताता है कि कैसे इल्म लुदुनी मिलता है। अब हम कभी गौर किया अल्लाह की किसी निशानी पे? हमें पता ही नहीं है अल्लाह की निशानी पे गौर कैसे करना है। हम कहते हैं हाँ मैंने देख लिया हवा चलती है, तो क्या गौर करूं इसमें, हवा चल रही है ना है? गौर करें। कभी आपने गौर करके हवाओं के निजाम को समझा? अल्लाह ने बताया कि भाई ये मेरी निशानी है। अल्लाह कहता है दिन और रात का अदल बदल होना मेरी एक निशानी है, मैं मुर्दा जमीन को जिंदा करता हूं ये मेरी एक निशानी है। कभी हमने गौर किया ये दिन क्या है? कभी हमने गौर किया ये रात क्या है? हमें पता ही नहीं। हम कहते हैं हाँ सूरज निकल आया, दिन चढ़ गया, सूरज डूब गया, रात हो गई। हम ओ भाई इस पे गौर करो, क्यों सूरज क्यों निकला? जब अगर थोड़ा सा आप तवक्कफ करके, जिससे सूरज निकलता है जब जमीन उसके सामने गर्दिश करती है, तो गर जमीन की गर्दिश से ये दिन और रात पैदा हो रहे हैं। आपकी सुई यहां के रुक गई बल्कि ठुस हो गई। हाँ या नहीं? अब ये सूरज के सामने जमीन की गर्दिश का क्या मतलब है? पता ही नहीं। ये चीजें गर्दिश में क्यों हैं? पता नहीं, बस गर्दिश में हैं। तो गौर व फिक्र जब करेंगे आप तो क्या होगा, जब आप गौर व फिक्र करेंगे तो तह दर तह दर तह दर तह, हत्ता के आप बात की कुन्हा तक पहुंच जाएंगे। अब ये बात हजूर कलंदर बाबा औलिया ने फरमाई के एक है हुक्माए रब्बानी, यानी साइंसदान लोग ये खारिज को देखते हैं और उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, ये खारिज से बातिन की तरफ चलते हैं। हजूर कलंदर बाबा औलिया ने कहा अंबिया कराम का तरीका कार ये है कि वो बातिन को पहले समझते हैं कि भी अल्लाह है, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने किस चीज को कैसे बनाया, इसलिए वो फौरन पकड़ लेते हैं, वो फौरन पहुंच जाते हैं। ये फर्क है, एक है खारिज से बातिन की तरफ चलना और एक है बातिन को आइडेंटिफाई करके खारिज को जानना। ये है अंबिया कराम का तर्ज फिक्र। अंबिया कराम के वारिस औलिया कराम ने जो सिलासल कायम किए हैं उनका ये तरीका सिखाने का, ये वो स्कूल है जहां ये तरीका सिखाया जाता है कि अंबिया कराम की तर्ज फिक्र कैसे अपनानी है। हमारे यहां दम दरूद के अलावा सिलसिले में कोई मसला ही नहीं सामने आता। तो ये बात वाजे हो गई कि जरूरी नहीं है कि जो इल्म जिसको आप खिजर कह रहे हैं, अल्लाह ने उसका नाम खिजर थोड़ी बताया, तो रवायतों में वासब बिन बरखिया का भी नाम नहीं बताया, कहा कि वहां मौजूद एक बंदा, लफ्ज बंदा अबद, अल्लाह जब लफ्ज अबद इस्तेमाल करता है तो वो डिफरेंट हो जाता है। अल्लाह का गुलाम, अब अल्लाह अपने गुलाम को जो काम मर्जी बताए। अब आसफ बिन बरखिया जो था उसको ये इल्म दिया, उसने कहा मेरे पास किताब का इल्म है, उस वक्त तो कुरान नाजिल नहीं हुआ था, तो कौन सी किताब का इल्म था ये। अब ये देखे ना लफ्ज है किताब, यानी सांचों का, कायनाती सांचों का इल्म जानता हूं मैं, उसने ये कहा आप यहां किताब पढ़ रहे हैं। फर्क है ना, जब आप गौर ही नहीं करेंगे, जब आप सांचों की बात पे नहीं आएंगे। अब्बा हजूर ने कितनी दफा कहा जमीन में डाइयां लगी हुई हैं, ईमानदारी से बताएं कभी आपने सोचा डाइयों से क्या मुराद है। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इरफान
जी? अल्लाह का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं सर?
करम मालिक का
सर, ये कुरान के अंदर जो है काफी आयात हैं जिनके अंदर बे आयात इल्ला का वर्ड है, तो ये बे यानी के साथ हैं, इंसान के साथ हैं, आयात हैं, तो वो इंसान के इनर
बे आयात। हाँ, और हम उनको दिखाएंगे उनके अपने अनफस में और बाहर आफाक में, दोनों तो जगह बताया भाई। अल्लाह की तरफ देखें, अल्लाह का कार, आप एक घर देखते हैं, मैं दोबारा मिसाल दे रहा हूं, आप कायनात पूरी को देखने की तौफीक अल्लाह आपको अता करे। आप एक घर को देखते हैं, आप घर देखकर क्या क्या अंदाजे लगाते हैं कि यार इसके जो पेंट किया ना जिसने, वो बड़ा अच्छा कारीगर है या बड़ा ही थका हुआ बंदा है, है? आप उसकी डिजाइनिंग देख के कहते हैं इसकी एलिवेशन ठीक नहीं है या बहुत अच्छी है, हाँ या नहीं?
जी सर।
आप किसी काम को देखकर काम करने वाले को सोचते हैं या नहीं सोचते?
जी बिल्कुल सर।
अब मुझे बताइए कि जब हम कायनात की किसी चीज को देखेंगे तो हमें खालिक की सिफात का इदराक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए।
तो अब समझ आया बे आयात का क्या मतलब है?
जी
क्या यानी ये बातें इन निशानियों के साथ साथ चलने पे समझ आएंगी।
ठीक है,
देखे ना अल्लाह के हर काम में अल्लाह का जहन काम कर रहा है, हाँ या नहीं? अल्लाह की कारीगरी, अल्लाह की करिश्मा साजी, अल्लाह की तख्लीकी सलाहियतें, अगर आप उसकी तख्लीक पे गौर करेंगे तो अल्लाह की तख्लीकी सलाहियतों का आपको इदराक होगा या नहीं होगा? ठीक हो गया
जी सर। अभी ये सर आप वो जिक्र कर रहे थे कि जिसे इल्मुल किताब 25 बंदे को हासिल था, तो ये आप अगर कुरान के अंदर देखें तो ये सूरा असरा के अंदर भी है, सुभान अल्लाह भी है, तौबा भी है, वहाँ पे भी आपका जिक्र है।
बिल्कुल।
और जी इसी तरह से जो है जब शैतान का जो है अल्लाह ताला के साथ मुकाबला है, तो उसमें भी शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदों को
जो मेरे बंदे होंगे, जो मुझे खालिक मानकर मेरी बंदगी करेंगे, जो मेरी बात समझेंगे, मेरी कही हुई बात पे उस तरह अमल करेंगे जिस तरह मैं चाहता हूं, तो वो मेरे बंदे होंगे। जो तेरे बंदे होंगे उनका हशर मैं तेरे साथ वो करूंगा जो तेरा करूंगा। साफ मकालमा है या नहीं? एक और आयत बड़ी इंटरेस्टिंग है इस जेल में, अबद के इस डेफिनेशन में आती है, सूरह यासीन की आयत है, अलम अहद अलैकुम या बनी आदम, क्या अलम अहद अलैकुम या बनी आदम ला ताबुदु शैतान। ये मुसलमान से किसी से पूछो कि ये अहद आपने कब किया था, वो कहेगा कि हमें तो पता ही नहीं, ये तो आयत ही हम पहली दफा सुन रहे हैं। क्यों इरफान भाई? नहीं, ये आयत है या नहीं है पहले तो ये तस्दीक फरमाए ना, अलम अहद अलैकुम या बनी आदम ला ताबुदु शैतान, के शैतान की इबादत ना करना। क्या मतलब हुआ? इबादत तो जिन मानों में हो, हम और आप लेते हैं, मुझे तो लगता है हम उसी की कर रहे हैं जिससे मना किया गया। भाई कब लिया था ये अहद? अलम अहद अलैकुम, इस टुकड़े पे गौर तो करें, ये अहद कब लिया, इसका तज़करा क्यों नहीं मिलता हमें? आपने हर बात की हकायात और रिवायात और पता नहीं किससे कहानियां सब कुछ जड़ दिया है? इधर आओ ना, ये अलम अहद अलैकुम कब लिया था तुमसे अहद? जब आप वही को वही की तरह समझेंगे तो तब भी गौर करेंगे ना कि यार ये मुझसे अहद लिया गया, क्या कहा? अलम अहद अलैकुम या बनी आदम, यानी आदम से नहीं, आदम की जुर्रियत से भी ये लिया गया। और इसकी तफसील पता कहां मिलती है? सूरह राफ की आयत नंबर 172 पढ़िएगा। शाहिदना, हमने देख लिया, ये हमने तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि तुम कल को मुनकर ना हो जाओ, यही अल्फाज है ना?
कुरान की आयत के ऊपर गौर नहीं करते हैं, असल में
फरमाया
ना कि कुरान को कुरान से समझो।
अरबी में समझो, कुरान को कुरान से समझो। अल्लाह रब्बे करीम कभी ये नहीं करते कि एक लफ्ज को एक जगह एक मतलब के लिए इस्तेमाल करें, दूसरी जगह दूसरे मतलब के लिए, तीसरी जगह तीसरे मतलब के लिए, क्योंकि वो एक ला मुतगयर ज़ात है, उसके कलाम में कंसिस्टेंसी है। ये असूल वाज़े हो गया। अब मुझे बताइए कि जब आप कहते हैं अकीमुस्सलात का मतलब नमाज पढ़ना है, तो फिर या इन्नल्लाह व मलाइकते यसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, यहां पे यसल्लून का तर्जमा आप नमाज क्यों नहीं करते? यहां आपने दुरूद कर दिया। और यसल्लन नार, वो आग से मिलेंगे, हैं? यहां नमाज क्यों नहीं करते कि आग की नमाज पढ़ो? ये जो एनामलीज है ना, किसमें? ये वही में फिक्रे इंसानी की मिलावट की वजह से हैं। क्या अर्ज किया मैंने? जब आप वही में, इसीलिए कभी किसी रूहानी बंदे ने कुरान की ना तर्जमा किया, ना तशरीह की, ना तफसीर लिखी। क्यों? क्योंकि वही अल्लाह खुद समझाता है बंदे को। हम और आप कोशिश कर सकते हैं उसको समझने की, काविश कर सकते हैं और लगे रह सकते हैं। अगर हम लगे रहेंगे तो जरूर अल्लाह करम फरमाएगा, जरूर हमें उसके असली मफाहिम, जो बातनी मफाहिम है, वो हम पे वाजे हो जाएंगे। ठीक हो गया
जी सर। एक दफा जो है एक मदरसे में जो है जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे जो वहाँ के जो हेड थे उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे मैंने ये सवाल किया था कि क्या कुरान के अल्फाज को अल्लाह ताला कहीं पे किसी मीनिंग में और कहीं पे किसी मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उनका कहना था जी बिल्कुल ऐसा जी कर सकते हैं। मैंने कहा जी एग्जांपल, तो उन्होंने एग्जांपल देखें कौन सी दी है। कहते हैं जी नजम का मतलब क्या? मैंने कहा जी सितारा है। तो कहते हैं जो सूरा ये रहमान है उसके अंदर वह नजम व शजरू, वहां पे जो है इसका मतलब जड़ी बूटी है। मैंने कहा जी ये जड़ी बूटी कहाँ से आ गया? तो उनके पास कोई तीन चार कुरान में भी पड़े हुए थे, तो उसमें उन्होंने एक कुरान, मुझे अब याद नहीं है कि किनका तर्जमा था, तो वहाँ पे उन्होंने जड़ी बूटी किया हुआ। उसकी लॉजिक ये थी कि यहाँ पे शजर का वर्ड है, तो यहाँ पे नजम का मतलब जो है ये जड़ी बूटी होना चाहिए, क्योंकि ये
होना चाहिए। लफ्ज देखें, लफ्ज चाहिए। मैं सदके जाऊँ आपके इन चाहतों के, ये जो हमें बीमारी लगी हुई ना, चाहिए है। सियासतदान क्या कहते हैं? अवाम को ये करना चाहिए। अवाम क्या कहती है? सियासतदानों को ये करना चाहिए। अफसर कहता है मातहतों को ये करना चाहिए। माँ कहती है बच्चे को ये करना चाहिए। बच्चा कहता है माँ को ये करना चाहिए। अरे तुम्हारी चाहिए। ये जहां लव चाहिए आ जाए ना, यकीन करो मुझे कुछ खारिश होने लगती कान के पीछे। भाई हमने तो मा तशाउना इल्ला यशाउल्ला का तर्जमा कर दिया कि तुम चाह नहीं सकते सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे, यानी कि तुम जो गलत कर रहे हो वो अल्लाह करवा रहा है तुमसे। मा तशाउना, तुम्हें नहीं चाहना चाहिए, ये क्यों नहीं करते? यहां चाहिए क्यों नहीं लगाते, जहां हर जगह घुसेड़ देते हो? मत चाहना, मत चाहो, इल्ला सिवाय आई यशाउल्लाह, जो अल्लाह चाहता है, ये क्यों नहीं करते हम तर्जमा? अगर ये तर्जमा करेंगे तो हमारी अकल सीधे रास्ते पे चल पड़ेगी, और ए सानू वारा नहीं खांदा, सानू नहीं, वो साढ़े हजरत जी नू। حضرت شیطان کو بارہ کھاتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ چل پڑے. آپ اس چکر میں پڑ جائیں کہ مجھے اللہ کی بات سمجھ نہیں ہے. یہ کون نہیں چاہتا؟ کون چاہتا ہے کہ آپ اس کی بات سنیں؟ کبھی کسی فقیر کو دیکھا یہ کہتے ہوئے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ وہ کہتا خود غور کرو بھائی، اللہ تمہیں سمجھا دے گا. ہاں یا نہیں؟ اللہ رب کریم نے صاف کہا ہے یسرنا القرآن لذکر فہل میں مدکر، ہم نے یسرنا، اللہ نے آسان کیا ہے اور اللہ ہی سمجھائے گا. مجھے تو مشکل لگتا ہے. مقصود صاحب بیچارے کہتے ہیں یہ میم گراؤ گے تو شکل نظر آئے گی. تمہیں میم لگانے کا بڑا شوق ہے. ایک تو شوق ہوتا ہے نا، ہمیں شوق ہے. بے شک بے شک. اردو میں عربی کا جو ہے ریشو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. فارسی کے بھی ہیں، پرتگالی کے بھی ہیں، انگلش کے بھی ہیں، ترکی کے بھی ہیں. لفظ اردو جو ہے یہ بذات خود ترکی زبان کا لفظ ہے، لیکن عربی کے الفاظ سب سے زیادہ ہیں. جی، اور کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہے؟ جی
سر، قرآن اور حدیث کے اندر جو بھی زمانہ چل رہا ہے، اس میں قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اوتھینٹک ہے کہ ہم جو ہے اس کو احادیث کو جو ہے قرآن کی روشنی میں جو ہے اس کو سمجھیں؟
پہلے اتنا ذہن تو بنا لینا. بات یہ بھائی، یہ پہلے اس کے لیے ذہن سازی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ میری آپ کی سکت کہاں ہے کہ ہم یہ کمپیریٹو کریں؟ دیکھیے پہلے، اب میں نے آپ کو ایک حدیث عرض کی تھی، الجنہ تو تحت اقدام امہاتکم، یاد ہے؟
جی جی جی.
کیا چار لفظ ہیں؟ آپ نے اس کو غلط ڈیسائفر کیا، تو جو ترجمے کا حشر آپ نے قرآن کا کیا وہی حدیث کا کیا ہوا، کیا کروں؟ مجھے تو اب اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ براہ راست جب آپ نے جڑ کو پکڑ لیا ہے، پہلے اس کو پوری طرح سمجھ تو لو. ٹھیک ہو گیا؟ جی. اور کسی کا ہے یا کافی ہو گیا؟ جی وعلیکم السلام. میرا خیال ہے کہ یہ دو الگ لفظ ہیں، مفہوم ایک ہے. جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا الٹے ہاتھ، بایاں ہاتھ، ٹھیک ہے؟ کہ بھئی الٹی سائڈ پہ چلو، الٹی طرف چلو، یعنی بائیں طرف چلو. اب اسی کا الٹی کا دوسرا مطلب ہے، وہ الٹی کرنا بھی ہے، کہہ کرنا. اب کہہ کے لیے دیکھیں دو لفظ آ گئے، الٹی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح دو لفظ ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. مشاما اور شمال، یہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے نیگیٹو تھنکرز. میمنا اور یمین، اصحاب الیمین اور اصحاب المیمنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ دو لفظ ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟
ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ یہ جب ہم اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرتے جس قوم کو، جو وہ نہیں چاہتے، ہدایت نہیں مانگتے تو نہیں دیتے، یہ انبیاء کو بھیجا گیا جیسے حضرت موسیٰ کے پاس، یہ فرعون کی طرف ہٹو جو تباہ کیا اس نے، اور एक जगह आता है कि वो हिदायत पकड़े, जब फिरौन हिदायत नहीं चाहता कि ये अंबिया को उनकी तरफ भेजना, ये क्या मायने रखता है?
देखिए अल्लाह, एक बात समझ लीजिए कि आप और हम बनी नौ आदम, ठीक है, बनी नौ आदम अल्लाह की सबसे डार्लिंग मखलूक हैं, और अल्लाह को बहुत चिंता है कि किसी तरह आप हदायत पाएं, आप बाज आ जाएं अपने किए से, करने से। क्या आप गलत करते हैं तो अल्लाह रब्बे करीम ने ड्यूटियां लगाई हैं फरिश्तों की, इनको इंस्पायर करो। क्यों? अल्लाह रब्बे करीम ने ड्यूटियां लगाई अपने बंदों की, अंबिया कराम भेजे, रिवायत में आता है 124,000 अंबिया कराम तशरीफ लाए, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गाइड किया ना लोगों को, भाई देखिए रुश्द और हदायत का जो निजाम है ठीक हो गया जी, यानी के रुश्द और हदायत का सिलसिला भी तो अल्लाह ही के हुक्म पे है ना, तो अल्लाह तो चाहते है क्या उसकी मखलूक ये गिला ना करे कि जी सानू तो किसी ने दसिया ही नहीं। क्यों जी? ठीक हो गया? चले अपना ख्याल रखिए, रहती है बात, अल्लाह खुश रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।